आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद नौवां अध्याय भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग इस अध्याय का 38वां श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। शितिक विशिख हतो विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभ अभिससार मद्बधार्थम स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंद। अनुवाद। जो मोक्ष के दाता हैं वे भगवान श्री कृष्ण मेरी परम गति हो। युद्ध क्षेत्र में मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध होकर उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया। उनका कवच तितर बितर हो गया और उनका शरीर खून से लथपथ हो गया था। तात्पर्य, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण तथा भीष्म देव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के कार्यकलाप अर्जुन के प्रति पक्षतापूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रहे थे। लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्म देव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भगवान परम होने के कारण शत्रु वेश में भी अपने भक्त की सेवा ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, न ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजित हैं। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है, यह उच्च पद से ललकारता है। यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये कतिपय दिव्य आदान प्रदान के आचरण हैं। ये कतिपय दिव्य आदान प्रदान के आचरण हैं भक्त तथा भगवान के मध्य। किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है, वे ऐसे आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते। भीष्म देव का एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीर को बाणों से छलनी कर दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत हो हुए। लेकिन वास्तव में यह अभक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए था। पूर्णतः दैवी शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। यदि ऐसा होता तो भीष्म देव उन्हीं भगवान को अपनी अंतिम गति के रूप में न चाहे होते। यदि भीष्म कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्म के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि यह योद्धा अपने भक्त द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। यह है दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि। ऐसे आचरण से भक्त तथा भगवान अपने अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वे भीष्म देव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्म देव की ओर उसी तरह बढ़ चले जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए बढ़ता जाता है। ऊपर से उनका संकल्प भीष्म देव को मारने का था, लेकिन वास्तव में अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। भगवान निस्संदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक हैं। निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वह मनवांछित फल देते हैं, लेकिन यहां तो भीष्मदेव भगवान के स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सारे शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। ये प्रसंग भागवत के नवे अध्याय में बड़ा रोमांचक और बड़ा अद्भुत और रहस्यमय है कि भीष्म पितामह जो भगवान को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अपने बाणों से भेद दिए थे और भगवान के शरीर से खून निकल रहा था और भगवान क्रोधित होकर उनके विपक्ष में तीर चलाने वाले भीष्म पितामह की ओर रथ का एक पहिया लेकर भागे मारने के लिए, वो भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं और उनकी अंतिम इच्छा यह है कि भगवान का मैं दर्शन करके शरीर त्याग दूं। और भगवान जो हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका जा रहे थे, वो न जाकर सारे पांडवों को लेकर भीष्म पितामह की प्रसन्नता के लिए स्वयं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भीष्म पितामह के सामने बड़े नम्रतापूर्वक खड़े हुए। ये बहुत रहस्यमय है, ये कैसा संबंध है? इस दुनिया में अगर कोई शत्रुता है किसी के प्रति, तो मृत्यु के समय उस शत्रु के बारे में नहीं सोचेगा, ऐसा नहीं सोचेगा काश मरते वक्त उसका दर्शन करके मैं मरूं, हो ही नहीं सकता। और वो शत्रु सब कुछ छोड़कर मित्र की भांति, परम मित्र की भांति, सब जब सबसे जरूरी समय उसके शत्रु का आके सामने खड़े हो जाए सेवक के रूप में, बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता। ये बहुत रहस्यमय है और ये रहस्य केवल भक्त जान सकता है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्षामि अनुसूयः, कि अर्जुन मैं तुझे जो कहने वाला हूं ये गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान आप 2 रुपया देंगे तो गीता प्रेस गोरखपुर से आपको एक गीता मिल जाएगा और पढ़ेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग गीता का सारा 700 श्लोक 18 अध्याय पूर्ण रूप से कंठस्थ है और ऊपर से नीचे आगे से पीछे आपको सुना सकते हैं, जो अच्छी बात है। हमारे एक भक्त एक बार नासिक गए थे किसी के घर में, तो वहां 2 बच्चों को, 13 साल की लड़की उनकी और 10-11 साल का लड़का, दोनों लड़के, एक लड़का लड़की दोनों, उनके 2 लड़कियां हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों खेल रहे थे। और उनका खेल क्या था, लड़की एक श्लोक बोलती थी गीता का, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और वो पूछती थी लड़के से कौन सा अध्याय का कौन सा श्लोक नंबर बता, और वो बोलता था चौथे अध्याय का 34वां। फिर लड़का पूछता था मन मनाभव मत भक्तो मत याजी माम कौन सा बता, 9:34। तो हमारे अच्छा उसके बाद ये नहीं, ये एक हो गया। उसके बाद लड़की एक श्लोक बोलती थी, उसका अगला श्लोक उस बच्चे को बोलना दूसरे बच्चे, फिर वो एक श्लोक बोलेगा उसका अगला वाला, और फिर सबसे महत्व सबसे कठिन, मैं एक श्लोक बोलूंगा उसका पिछला श्लोक तू बोल, अगला वाला कोई भी बोल सकता है क्योंकि तुरंत हाँ नरसिंह आरती होने के बाद वृंदाय तुलसीदास शुरू हो जाता है क्योंकि मालूम है उसके बाद ये उसके बाद ये, पर रिवर्स जाना बड़ा मुश्किल। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गमिस्तिनी उसका पहला वाला कौन, यहां ये 5:18-17 वाला। तो ये ऐसा संस्कार, ये दो एक खेल बच्चे दो 13 और 12 साल के बच्चे खेल रहे थे, खेल था उनका क्विज कॉम्पिटिशन बच्चों में, हमारे भक्त बेहोश होते होते बच गए। बोले हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में इतने साल से ट्रेनिंग ले रहे हैं, 30 श्लोका रटने में हमारा 30 बाल झड़ जाता है, पर ऐसे कैसे ये लोग इतना। तो थोड़ा बहुत प्रयास अच्छा संस्कार इत्यादि से लोग ये जान सकते हैं, वो भी कम है आजकल के लोग, कम से कम गीता बोलो तो भी काफी है। गीता बोले को कौन सी गीता, सीता और गीता मालूम और कुछ नहीं मालूम। तो थोड़ी बहुत प्रयास से हो सकता है कि हम लोग गीता को कंठस्थ कर सकते हैं, पर भगवान कहते हैं कि इदं तुते गुह्यतमम, गुह्य गुह्यतरम और गुह्यतमम। गुह्य मतलब बहुत ही रहस्यमय, गुह्यतरम मतलब ज्यादा ही रहस्यमय, और गुह्यतमम मतलब पूर्ण रूप से रहस्यमय। तो इदं तुते गुह्यतमम प्रवक्षामि अनुसूयवे, तुम ये समझ सकते हो अर्जुन क्योंकि तुम मुझसे असूया नहीं करते। असूया मतलब क्या, असूया मतलब किसी की परिस्थिति को देखकर जलना। क्यों जलते हैं, क्योंकि इस संसार में हरेक व्यक्ति भोक्ता और प्रभु बनने की कोशिश है, भोग करना और प्रभुत्व जमाना, ये इस भौतिक संसार का स्वभाव हो गया है किसी न किसी तरह से। इसमें हमें क्या मिलेगा और कैसे इन चीजों को नियंत्रण करूं मैं, हर एक चीज को नियंत्रण करना और हर एक चीज को अपने विषय इंद्र तृप्ति के लिए भोग करने का एक साधन बना लेना। प्रभुपाद जी 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग, आप अगर जानना चाहेंगे कि आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी बाधा क्या है, सबसे बड़ी बाधा, तो प्रभुपाद जी के इस गीता के 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक का अंतिम पैराग्राफ बड़े ध्यान से पढ़िए। भगवद गीता है इधर, भगवद गीता हमेशा बैग में होना चाहिए। हमारे एक भक्त हैं, उनके पास कुछ भी हो जाए अपना चश्मा भी भूल जाएंगे पर भगवद गीता पास में रहेगा उनका। अच्छा है एज इट इज, नहीं है तो कृपया सब लोग खरीद के भाग अपने बैग में रख लीजिए। मराठी मध्ये अरे नहीं वास्तव दिया, हमारा भी थोड़ा अभ्यास हो जाएगा। शुद्ध भक्ताच्या संघामध्ये पूर्णपणे कृष्ण भावनामय होऊन भक्ती करीत असताना मनुष्याने काही विशिष्ट गोष्टीचा समूळ विनाश करून त्यावर विजय मिळवणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मनुष्याने अंतःकरणचा दुबळेपणावर मात केली पाहिजे. हृदय की दुर्बलता, त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम, त्यक्तो तिष्ठ परंतप, हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता. मनुष्याचे सर्वप्रथम अधःपतन हे भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजविण्याच्या इच्छेमुळे होते. तो पहिला भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व, भौतिक प्रकृती के ऊपर प्रभुत्व जमाना, मतलब मैं एंड द लॉर्ड एंड मास्टर. यामुळे मनुष्य भगवंताच्या दिव्य प्रेममयी सेवेचा त्याग करतो, इसीलिए वो त्याग कर देता है, क्योंकि वो प्रभु बनना चाहता है. पर भगवान कहते मैं प्रभु हूं, बोलते नहीं मैं प्रभु हूं. ठीक है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, पर दास नहीं बनना चाहता, प्रभु बनना चाहता है. अंतकरणाचा दूसरा दुबलेपणा म्हणजे मनुष्याची भौतिक प्रकृतीवर स्वामित्व गाजण्याची प्रवृत्ती वाढली की पदार्थामध्ये आणि पदार्थांच्या संग्रह करण्यामध्ये तो आसक्त होतो. सांसारिक समस्या या अंतकरणाच्या दुबळेपणामुळे निर्माण होतात. या अध्यायातील पहिले 5 श्लोक आहेत ना, उसके बाद वर्णन. तो ये दो चीज है, इसको समूल नष्ट कर देना चाहिए. और ये प्रभुत्व जमाने का और भोग करने का पराकाष्ठा हिरण्यकशिपु, हिरण्य यानी सोना. क्यों सोना? सोना मतलब सोना नहीं खाट के ऊपर, सोना चांदी पैसा. क्यों पैसा चाहिए? क्या पैसा खाते हम लोग? नोट क्यों चाहिए हमको? क्योंकि सबसे बड़ा रुपया. When money talks, everyone walks. पैसा बोलता है तो सब चलते हैं. तो नियंत्रण करने की जो प्रवृत्ति आ जाती है, हमको पैसे से लेना देना नहीं, हमको नियंत्रण करना है. मैं जो बोलूंगा सब करना चाहिए. कौन करने वाला? कोई नहीं करने वाला. गाजर लटकाना, ये ले पैसे का कर, ठीक है, यस सर. तो प्रभुत्व जमाने की इच्छा और प्रभुत्व जमाने की कोशिश में क्या हो जाता है? पदार्थों के प्रति आसक्ति और पदार्थों को संग्रह करने की इच्छा, भोग करने की इच्छा. तो हिरण्य यानी सोना और कशिपु यानी मुलायम गद्दा. क्यों? भोग करने के लिए. तो ये बहुत ही गहराई में हमारे अंतस्थ में ये फंसी हुई है ये इच्छा. पर भगवान कहते हैं गीता में, कौन व्यक्ति संसार में शांति प्राप्त कर सकता है? भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति. शांति किसको मिलेगी? भोक्तारं यज्ञ तपसाम. जब व्यक्ति समझ जाता है कृष्ण भोगता है, सब कुछ कृष्ण की भोग के लिए, ये पूरी सृष्टि जो है उनकी प्रसन्नता के लिए बनाई गई है. और सर्वलोक महेश्वरम, हम छोटे मोटे ईश्वर हैं कुछ की पर, कुछ थोड़ी बहुत हद तक, कुछ समय तक, कुछ समझ तक, कुछ हद तक नियंत्रण कर सकते हैं. पर सर्वलोक महेश्वरम, महेश्वर भगवान अल्टीमेट नियंत्रण करता वो है. वो जैसे कभी कभी हम बच्चे को एक कमरे में डाल देते हैं और बोलते ठीक है इस कमरे के अंदर इधर उधर कहीं भी घूम, कमरे से बाहर नहीं जाने का, समझे? तो उस कमरे के अंदर उसको थोड़ा स्वतंत्रता देते हैं, हाँ कहां भी जाए, इधर भी कहीं कुछ कर, पर इधर से बाहर नहीं जाना दास। तो इस तरह से कुछ हद तक भगवान के अंश होने के कारण हमारे अंदर वो थोड़ी सी स्वतंत्रता है, और वो स्वतंत्रता क्या है, भगवान की अंतरंग शक्ति में सेवा करेंगे या बहिरंग शक्ति में जबरदस्ती सेवा करेंगे। सो सर्वलोक महेश्वरम, वो व्यक्ति शांत हो सकता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। शांति शांति सब लोग बातचीत करते हैं, ओम शांति, पर असली शांति कब मिलेगी, जब तक आप नियंत्रणकर्ता बनने की कोशिश कर रहे हो, जब तक आप भोग करने की कोशिश कर रहे हो, जब तक आप अपने आप अलग से भगवान से अलग होकर दूसरों के शुभ चिंतक बनने की कोशिश कर रहे हो, तब तक कभी तुम्हारे हृदय में शांति पैदा नहीं हो सकती। उस व्यक्ति के हृदय में शांति उत्पन्न हो सकता है जो पूर्ण रूप से जानता है कि भगवान भोक्ता है, भगवान महेश्वर है, भगवान ही हमारे शुभ चिंतक हैं, हम उनके हाथ में एक कठपुतली के समान हैं, निमित्त मात्र भव सभ्य साची। उनकी इच्छा को जानकर उनकी इच्छा के अनुसार कार्यरत होना, यह भक्ति है। एक्चुअली सिर्फ आपने स्वीकार कर लिया कि भगवान हैं और मैं उनका दास हूं, तब जाके भक्ति की शुरुआत हो गई। आदव श्रद्धा, जीव गोस्वामी कहते हैं कि श्रद्धा की शुरुआत कब है, जब व्यक्ति सोचता क्या भगवान है क्या, अगर कोई प्रश्न पूछे क्या भगवान है, यानी भक्ति शुरू हो गई। अब बोलेगा ऐसे कैसे, क्योंकि जो नास्तिक है वो समझता है भगवान है ही नहीं, मतलब शत प्रतिशत उसको विश्वास है कि भगवान नहीं है, पर अगर कोई था सचमुच में है क्या, है कि नहीं, इसका मतलब भक्ति शुरुआत। क्यों, क्योंकि 50% श्रद्धा हो गया, 50% हो भी सकते हैं, 50% दैवी हो सकते हैं, इसका मतलब शुरुआत हो गई। आदौ श्रद्धा और ततः साधु संग, फिर अगर साधु संग में आ जाए और उसको सबूत मिल जाए और उसको अगर धीरे धीरे भक्तों के संग में भक्ति मिलती है, श्रद्धा बढ़ती है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। तो इस तरह से शांति तब मिलेगी, और ऐसा व्यक्ति कृष्ण भक्त निष्काम, अलग से इच्छा, हमारी तकलीफ क्या है, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हमारे मन में, ये है वो है वो, बहुत सारी इच्छाएं, और ये इच्छाएं हमें हरे कृष्ण और ये इच्छाएं हमें भगा रही है। देखिए एक सुंदर श्लोक है संस्कृत में जो कहता है कि ये देखो आशा की श्रृंखला कैसी है, जो आशा की श्रृंखला में बंधा हुआ है वो दुनिया भर भागता रहता है। श्रृंखला मतलब चेन ना, चेन को भी श्रृंखला बोलते हैं। जो आशा की श्रृंखला से बंधा हुआ है वो भाग रहा है, और जो आशा की श्रृंखला से मुक्त है वो चुपचाप बैठा हुआ है एक जगह। जनरली जो बंधा हुआ है वो एक जगह बैठता है और जो मुक्त है वो भागता है, पर आशा ऐसी वस्तु है जो आशा की श्रृंखलाओं से बंधा हुआ है वो दुनिया भर भागता रहता है, और जो आशा की श्रृंखलाओं से मुक्त है वो एक ही जगह चुपचाप बैठा रहता है। तो आशा यानी भौतिक इच्छाएं जब जाएंगी, अब भौतिक इच्छाएं मतलब क्या, भौतिक इच्छाएं मतलब वो इच्छाएं जो भगवान की इच्छा से भिन्न है, भगवान की इच्छा से अलग इच्छाएं जो हैं वो भौतिक इच्छा। पर भक्त कहता है कि प्रभु जो आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा, इसको कहते हैं एकत्व। एकत्व का मतलब ऐसा नहीं है कि हम दोनों मिक्स हो गए और एक बन गए। एकत्व का मतलब इच्छाओं में एकत्व, भगवान से एक होना का मतलब है भगवान की इच्छा और हमारी इच्छा में कोई अंतर नहीं। जैसे हम कहते हैं ना हम सब भारतीय एक हैं, ऐसा नहीं कि सब भारतीयों को पकड़ा एक मशीन में डाल दिया और दबा के उनको एक ऐसा एक बड़ा पिंड बना दिया, हम सब एक हो गए, हमारा अस्तित्व खो बैठे। नहीं, हम सबका अस्तित्व है, पर हमारा विचारधारा, हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य, ये सब एक है। ये एकत्व प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है, ना कि हम भगवान में लीन होकर अपना अस्तित्व को खो बैठे। क्योंकि भगवान ने सारे जीवों का निर्माण किया है आनंदमयोभ्यासा, आनंद के लिए। जैसे पति पत्नी साथ में आते, फिर बच्चे चाहिए। क्यों बच्चे चाहिए? क्योंकि जितना ज्यादा उतना अच्छा, मोर द मेरियर। तो इस तरह से उनका विस्तृत स्वरूप है ये सब। तो इस तरह से आनंदमयोभ्यासात एको बहुश्याम, भगवान अपने आप को विस्तृत किए। क्यों? रस का आदान प्रदान करने के लिए। रस का आदान प्रदान पिछले तीन दिनों में हम लोग चर्चा कर रहे हैं भक्त रसामृत सिंधु से। ये रस का विज्ञान क्या है? ये रस कोई नई बात नहीं है। आदि रस, मूल रस के अहम सर्वस्य प्रभु भगवान सबके सृष्टि करता है, उन्हीं से आया है। कृष्ण रसराज है, रास बिहारी है, अखिल रसामृत मूर्ति। तो ये रस का आस्वादन करने के लिए अपने आप को विस्तृत किए, शक्ति, अपनी शक्ति के द्वारा अपने आप को विस्तृत किए, ये आदान प्रदान करने के लिए। और जीव का स्वरूप है भगवान के साथ प्रेममयी आदान प्रदान, प्रेममयी आदान प्रदान। और प्रेम का मतलब क्या? सच्चा प्रेम का मतलब, प्रेम और काम में अंतर क्या? प्रेम और काम में एक ही अंतर है। प्रेम का मतलब हम कब कहते हैं ना, हम, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। साधारणतः हम एक दूसरे कहते हैं मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं। कोई नहीं कहता मेरे हृदय में काम भड़क रहा है तेरे लिए, कोई नहीं कहता, सब कहते प्रेम। पर प्रेम का मतलब और प्रेम और काम में अंतर एक ही है। प्रेम में और काम में अंतर यह है कि किसकी प्रसन्नता, किसको सुख और आनंद देने की इच्छा है। अगर जिस व्यक्ति से हम प्रेम कर रहे हैं उस व्यक्ति को प्रसन्न करने की इच्छा है तो वो प्रेम है। पर उस व्यक्ति के साथ मुझको कैसा यह आनंद दे सकता है, अगर उद्देश्य यह है कि इसमें इस रिश्ते में मुझे क्या मिलेगा, तो तुरंत वो काम वासना है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, वो इच्छा कि इसमें मुझको क्या मिलेगा। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, इसको बोलते हैं काम वासना। पर वही काम वासना जिसका स्रोत जो है वो शुद्ध प्रेम है, कृष्ण प्रेम, अभी वो सुप्त अवस्था में है। कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा, कृष्ण के इंद्रियों को कैसा, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब कृष्ण को प्रेम करने की इच्छा, कृष्ण के इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा हो जाती है तो वो तुरंत हो जाता है प्रेम। तो भगवान कहते हैं इदम दुदे गुह्यतमं प्रवक्षामि अनसूयवे। तुम असूया नहीं कहते, असूया जब भक्ति का मतलब एटलीस्ट हम लोगों ने स्वीकार किया है कि हम सेवा करना चाहते हैं भगवान की। कम से कम ये तीन चीज हम भगवान को मानते हैं, हम मानते हैं कि हम भगवान के अंश हैं और अंश होने के नाते पूर्ण की सेवा करना हमारा सनातन धर्म है। सनातन जीव जब सनातन भगवान के साथ सनातन आकाश में अपने सनातन रिश्ते में पुनर्स्थापित होकर सेवा करना चाहेगा, उसको कहते हैं सनातन धर्म। तो वैसा व्यक्ति इस आदान प्रदान को समझ पाएगा। ये भागवत जो है रसमालयम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हर एक व्यक्ति रस की आस्वादन करने की खोज में है। परसों हम चर्चा कर रहे थे, अभी आम का सीजन आ रहा है कि नहीं। हर एक व्यक्ति सोच रहा है आम कब आएगा, आम कब आएगा। तो क्यों हम इतना पैसा देके देना चाहते हैं, ताकि आम खरीदने, इसलिए नहीं आम को शोकेस में रख के उसको देखते रहेंगे, नहीं। आम खरीदते हैं, आम खरीदते उसका छिलका निकालते हैं, गुठली निकालते हैं और उसके रस निकालते हैं और उस रस को आस्वादन। आम खरीदने का मतलब हमको रस से लेना है, गुठली से नहीं, छिलका से नहीं। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति इस दुनिया में रस की खोज में है। और ये रस का ज्ञान कोई नई बात नहीं है। 40 कोटि साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने इसी ज्ञान को इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, 40 कोटि साल पहले सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। और गीता में कहा गया है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति रस की खोज में है। हर एक चीजों में रस चाहिए, उसमें कुछ तो रस है। स्थूल रूप से हाँ, आम की गुठली डालते हैं, 10 साल तक उसको पानी डालते हैं, जैसे जैसे पत्ता आता है खुशी होती है, बड़ा होगा, डाल आ गया, पत्ता आ गया, फूल आ गया, आ आ 20 साल के बाद आज पहला फल आया, अभी कैरी है और थोड़ा पकने दो, और पकने के बाद उसका आस्वादन, तब हमारा पेड़ का उगाना सफल हो गया। इसी तरह से हर एक व्यक्ति दुनिया में इतना कोशिश कर रहा है, काम कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा पैसा कमाए। क्यों पैसा कमाए? ताकि पैसा आएगा तो संबंध जोड़ सकते हैं लोगों के साथ। कोई गरीब आदमी है, किसी के साथ संबंध नहीं रखना चाहता, कोई उसके साथ संबंध नहीं रखना चाहता। क्यों? क्योंकि क्या कर दे सकता है, मुझे कुछ नहीं दे सकता ये। तो हर एक व्यक्ति आदान प्रदान करना चाहता है एक संबंध में, चीजों के साथ या लोगों के साथ संबंध स्थापित करना एक फल है, और उस फल का जो रस है उसमें आदान प्रदान, प्रेममयी आदान प्रदान, क्योंकि वो प्रेममयी आदान प्रदान जो तृप्ति करता है हमारे हृदय को, वो कोई दुनिया की कोई चीजें तृप्त नहीं कर सकती। तो ये भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति इस रस की खोज में है, प्रेममयी आदान प्रदान। एक आदमी कितना काम करता है सुबह से शाम तक, किस लिए? ताकि पैसा कमा के अपने पत्नी अपने बच्चों की अच्छे तरह से देखभाल करे। क्या ना, इतना क्यों तपस्या करना है? क्योंकि उनके उनको प्रसन्न करने में, क्योंकि उनसे वो प्रेम करता है, अपने परिवार के सदस्यों से वो प्रेम करता है। प्रेम यानी उनको प्रसन्न करना, और उनको प्रसन्न करने के लिए दिन भर काम करता है वो। इसी तरह से देश प्रेमी देश को प्रेम करते हैं, इसीलिए अपना अपना जान देने के लिए तैयार है उसके लिए। क्यों? क्योंकि देश से प्रेम करते हैं। देश को कैसा प्रसन्न करे, इसीलिए कुछ समाज सेवक समाज को प्रेम करते हैं, और इसीलिए अपना पूरा जीवन न्योछावर करते हैं। क्योंकि प्रेम यानी जिससे प्रेम करते हैं उस को प्रसन्न करने की चेष्टा कोशिश। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति इस रस प्रेम का रस का आस्वादन की खोज में है। पर इस दुनिया में ये सब करने के बावजूद भी तृप्ति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जो जीव है वो अनंत प्रेम चाहिए उसको, असीमित प्रेम और अनंत प्रेम, अमर प्रेम लगातार मिलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं मिलता। कोई एक वस्तु थोड़े दिन के लिए हमें वो रस मिलता है, तृप्ति मिलती है, पर थोड़े दिन के बाद वही वस्तु या वही व्यक्ति में वो रस नहीं है, अभी वो रस चला गया। क्यों? व्यक्ति वही है, वस्तु वही है। पहला बार जब व्यक्ति गाड़ी खरीदता है, वाह, उसके ऊपर बैठा और चलाया, बहुत आनंद आता है, पर उसके बाद ठीक है बैठा है वो। कोई भी चीज दुनिया में ऐसा है, फिर इसीलिए हम बदलना चाहते हैं उसको। ये पुराना हो गया, अभी नया, ये हो गया अभी नया। क्यों? क्योंकि हमको कंटिन्यूअस आदान प्रदान चाहिए। पर इस दुनिया में हर एक चीज क्षणभंगुर है, हर एक चीज नश्वर है, हर एक चीज नष्ट हो रहा है। रिश्ते, एक रिश्ते जोड़ते हैं, पर हमारी अपेक्षा अनंत और अमर अपेक्षा है। हमेशा ये प्रेम देते रहे, हमेशा ये करते, नहीं हो सकता। ये सीमित है, असीमित और अमर आदान प्रदान रस कोई इस दुनिया में नहीं दे सकता। केवल दो व्यक्ति दे सकते हैं, एक कृष्ण और दूसरा कृष्ण का शुद्ध भक्त। आप बोलोगे कृष्ण का शुद्ध भक्त कैसा है? वो भी तो सीमित व्यक्ति है। सीमित व्यक्ति है, पर क्योंकि उसके साथ कृष्ण से संबंध है, उसके हृदय से कृष्ण का प्रेम प्रकट होता है, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति भी हमको वो प्रेम दे सकते हैं, एक उसका एक स्वाद दिला सकते हैं हमको टू ए लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि वो एक माध्यम बन गए, कृष्ण प्रेम दे रहे हैं उस व्यक्ति के द्वारा, ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम। नहीं तो कोई जीव नहीं दे सकता, अपने आप में ये प्रेम नहीं दे सकता। तो इसीलिए जानते हुए कि हर एक जीव अनजाने में या जानते हुए इसी रस के खोज में है। निगम कल्पतरोर, शास्त्र जो है एक कल्पतरु है, एक ऐसा वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो भी मांगोगे मिलेगा। ये वैदिक क्षेत्र ऐसा है। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्राम, मोक्षार्थी लभते गतिम। उसके नीचे खड़े होकर उसमें सब है, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये अच्छी पत्नी चाहिए तो ये करो, ये करोगे तो ये मिलेगा। निगम कल्पतरोर, कल्पतरु है, पर मूर्खतावश न जानते हुए हम ऐसी चीज मांग रहे हैं जो हमें तृप्त नहीं कर रहा है। हे प्रभु अच्छी पत्नी दे दे, आ गई, अरे इसको खुश करने के लिए भी पैसा दे, पैसा भी आ गया, अरे पैसा को मेंटेन करने के लिए बुद्धि दे, टेंशन बढ़ गया जब से पैसा आ गया। पहले अच्छा था, खुशी था, कोई तकलीफ ही नहीं था, अभी चिंता बढ़ गया है। जब नहीं था तो दूसरी प्रकार की चिंता, अब आ गया तो दूसरी प्रकार की चिंता। तो इस तरह से निगम कल्पतरु, इस कल्पतरु के नीचे खड़े होकर ये ढूंढ रहे, ये ढूंढ रहे, और सब जो भी चाहिए वेदों में वर्णन है कैसा प्राप्त किया जा सकता है। रावण और हिरण्यकशिपु मूर्ख नहीं थे। कामैस्तैस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, ये लोग बुद्धिमान थे, ये लोग भौतिक रूप से, इसीलिए उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था। चतुर्वेदी थे दोनों, त्रिवेदी भी नहीं, द्विवेदी नहीं, चतुर्वेदी, सारे वेदों को जानते थे और उनको मालूम था कामनाओं को पूर्ण करना है तो लीगल वे ऑफ फुलफिलिंग डिजायर, नॉट इलीगल। तो निगम कल्पतरु, वेदों में वर्णन है तुम्हें कुछ भी चाहिए तो क्या मिल सकता है, पर निगम कल्पतरोर गलितम फलम, उसका जो परिपक्व फल है। अंततः सारे शास्त्रों का उद्देश्य क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। इसीलिए भागवत में वर्णन है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तुम्हारे अंदर कोई कामना हो, सारी कामनाएं दुनिया भर की कामनाएं हो, मोक्ष काम मोक्ष की कामना हो, अकाम या कोई कामना नहीं हो तुम्हारे हृदय में, पर तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। उदारधी, उदारधी मतलब बहुत बुद्धिमान आदमी, वो केवल रसराज रास बिहारी श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए उसको। उदारधी सबसे बुद्धिमान आदमी वो है जो कृष्ण के पास जाता है। भगवान कहते हैं गीता में चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ उदारा सर्व एवैते। ये उदार बुद्धि वाले हैं, हृतक ज्ञाना नहीं है, उनकी बुद्धि छोटी नहीं है, बड़ी बुद्धि है, सही व्यक्ति के पास आए हैं, पर ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपनी इच्छा को पूर्ण करके भाग नहीं जाता, टिके रहता है तो चलेगा। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, उसका परिपक्व है क्या, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। शुकदेव गोस्वामी जिन्होंने पूर्ण रूप से सारे वेदों के मर्म को जाना, साक्षात्कार किया, उतारा है, शुक मुखाद अमृत द्रव, द्रव मतलब सेमी सॉलिड रस, न इसमें गुठली है न इसमें छिलका है। गुठली क्या है, छिलका क्या है, कर्मकांड ज्ञानकांड सकली विषय भांड, कर्मकांड में फंस जाना, ज्ञानकांड में फंस जाना, ये सब गुठली और छिलका है, कड़वा लगता है बाद में। तो ये सब हटाने के बाद शुकमुखाद अमृत द्रव प्योर रस, इसमें कुछ तीखा क्या बोलते हैं अटकने वाला कुछ नहीं, पूरा उतरने वाला एकदम फर्स्ट क्लास। शुकमुखाद अमृत पिबत भागवतम रसम आलयम, रस का आलय है। मुहुर, मुहुर मतलब बार बार पियो, इसको पीते ही रहो। अब कोई भी ऐसा रस है जो आप पीते रह सकते 24 घंटे 365 दिन, चैलेंज, कोई भी ऐसा रस है इस दुनिया में जितना भी आपको प्रिय रस हो, कोई भी रस, क्या आप 24 घंटे 365 दिन इस रस का आस्वादन कर सकता है? चाहता है पर पेट बोलता है नहीं, मेरा कैपेसिटी खत्म हो गया, और जीवा बोलता है बस हो गया, कितना पी और कुछ पी, बहुत मिठाई हो गया, फरसान खा, अभी फरसान बहुत हो गया, मिठाई खा। इस तरह से एक व्यक्ति के साथ बहुत हो गया, अभी दूसरे के साथ जा, उसके साथ भी तंग हो गया, अभी तीसरे के साथ जा, तो इस तरह से ढूंढते, करोड़ों करोड़ों जन्मों से भी ढूंढ रहे इस रस के पीछे, उस रस के पीछे। पिबत भागवतम रसमालय मुहुर हो रसिका, पर ये रस जो है भक्ति रस, कृष्ण रस, सततम कीर्तयंतो माम। हरिदास ठाकुर 22 घंटे रस को पीते थे, और वो कहते थे क्यों क्यों सोना है, काश सोता नहीं तो और थोड़ा 2 घंटा पीता। रूप गोस्वामी कहते हैं अरे क्या रस पीने के लिए सिर्फ 2 छेद दिया है बस कान का, काश मेरे पास 1,000 कान होते, 1,00,000 कान होते, करोड़ों जिह्वा होते, क्योंकि रस इतना है और मेरा मुंह इतना छोटा है, कितना घुसा से सबजी पूरा टांकी भर के है और इतना उसमें मुंह छोटा है, ऐसा लगता है क्या निकल ही नहीं रहा है, इसका मुंह बड़ा कर देंगे तो ज्यादा निकलेगा। तो कान इतना छोटा है इसके अंदर घुसता ही नहीं, इतना रस है। तो ये सोच नहीं सकते हम इसका, क्योंकि इस भौतिक संसार में ऐसा कोई अनुभव है ही नहीं हमारे जीवन मुहूर्त। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी कहते हैं, सुत गोस्वामी को कहते हैं नैमिषारण्य ऋषिगण, वयम तू न वितृप्यामह उत्तम श्लोक विक्रमे, वयम तू न वितृप्यामह उत्तम श्लोक विक्रमे यत् श्रृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। अरे न केवल ये 24 घंटे पी सकते हैं, बल्कि एक एक घंटे के बाद इसका रस बढ़ता जाता है, स्वादु स्वादु पदे पदे। 5 साल पहले 16 माला तपस्या लगता था, आज भी कम नहीं है पर उतना बुरा नहीं है जितना पहले था। आज कभी कभी लगता है एकादशी के दिन थोड़ा एक्स्ट्रा करें। ये एक चैलेंज है, पूरे जिंदगी भर एक व्यक्ति किसी प्रेमी का नाम इतना ही आस्वादन के साथ लेते रहे भगवान के अलावा, इंपॉसिबल। तो यत् श्रृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे, और ये रस है। और यहां हम भीष्म पितामह की देख रहे हैं, भीष्म पितामह लड़ रहे हैं और लड़ाई में भी आस्वादन कर रहे हैं। बोले ऐसा कैसे भाई, भगवान की ओर तीर चला रहे हैं, भगवान के शरीर को भेद रहे हैं, खून निकल रहा है और मृत्यु के समय याद कर रहे हैं, वाह वो दृश्य, मैंने भगवान पर तीर चलाया और भगवान की खून से लथपथ हुआ शरीर मेरी ओर आक्रमण करने के लिए आए, वाह बस इसी का स्मरण होते रहे प्रभु। जैसे जन साधारण लोग क्या करते हैं दुनिया में अपने मतलब जिंदगी भर जहां भी गए, चलो स्विट्जरलैंड गए, महाबलेश्वर गए, उधर गए, थोड़ा हनीमून के लिए गए, पिकनिक के लिए गए, जहां भी गए अपने प्रिय मित्रों के साथ या रिश्तेदारों के साथ, तो एक अच्छा अनुभव मिला, रस का आस्वादन हुआ, अच्छी जगह अच्छे लोग, ऊंचे लोग ऊंची पसंद ऐसे अच्छे लोग अच्छी पसंद, अच्छा जगह अच्छे लोग, अच्छा आदान प्रदान हुआ, इसको हम याद रखना चाहते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, एक मिनट बैकग्राउंड वही होने दो, झरना तुम खड़े रहो क्योंकि हृदय में तो नहीं रहेगा, कम से कम एल्बम में लगा के रखें। और सब रिटायर होने के बाद बैठ के, यहां गए थे हम लोग, मालूम है उधर थे हम लोग, मालूम है तुमने क्या कहा था उस समय, इच्छा होती है ना एल्बम, तुम उस समय ये कहे थे हम ऐसे कहा, तो आराम से बैठ के आस्वादन करना चाहते हैं। बाद में फोटो वाले के लोग गुजर गए, सिर्फ फोटो ही रह गया, फिर वो फोटो देखते हैं तो रोते रहते हैं, जो आनंद दिया आज दुख का कारण हो गया। पर ये फोटो भीष्म पितामह ने अपने हृदय में अंकित कर दिया, वाह ये दृश्य, थोड़ा ज्यादा हो गया क्लिक किया उन्होंने, और एक्चुअली जब शरीर छोड़ रहे हैं भीष्म पितामह, एक एक श्लोक एक एक पन्ना मोड़ रहे हैं, आह प्रभु आप श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, आप अपने भक्तों के सारथी बनकर एक हाथ में घोड़े कर क्या बोलते हैं लगाम और दूसरे हाथ में चाबुक लेकर सेवक बनकर थे, मृत्यु के समय यही अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति मत भावम नाति यास्ति अत्र संशय। एक एक श्लोक भी एक एक दृश्य है। एक्चुअली भीष्म पितामह जब शरीर छोड़ना चाहते हैं, सबको सब चीज बोल दिए, उसके बाद वाइंड अप किए, पहले अपनी चेतना को बोलना बंद किए, युधिष्ठिर महाराज को बोलना, बोल रहे थे कुछ। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा, आप बोल रहे हो कि कृष्ण की इच्छा है कि मैं राज्य करूं, राज्य करना है तो क्या दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, सब धर्म बताए। सब धर्म बताने के बाद जैसे एक कूर्म कछुआ अपनी इंद्रियों को अंदर ले लेता है, उन्होंने अपने आप को, अपने मन को सिकुड़ लिया बाहर के विषय चीजों से, ये योग, योग की परिपूर्णता है। भीष्म पितामह कभी हिमालय जाके योग की अभ्यास करने का कम से कम इतिहास में वर्णन नहीं है, पर क्योंकि वो महान भगवान के भक्त थे, योगी नाम अपि सर्वेशां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तत्वमतः। योगी का मतलब जिसके मन और इंद्रियां पूर्ण रूप से उसके वश में है, तो मृत्यु के समय अपने इंद्रियों को और अपने मन को सिकुड़ लिए और एक पूर्ण रूप से एकाग्र चित्त किए। यतो यतो निश्चलवी मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य एतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। यह पूर्णता है योग की, परिपूर्णता। और जप का मतलब हम लोग वही अभ्यास कर रहे हैं हर रोज। अगर फाइनल एग्जाम में करना है तो हर रोज अपना होमवर्क करना पड़ता है, क्योंकि सरप्राइज टेस्ट कभी भी हो सकता है। तो जप का मतलब है जहां मन भाग रहा है वहां से लेकर अपने मन को कृष्ण के चरणों में केंद्रित करना, क्योंकि उन्होंने ये किया था इसीलिए मृत्यु के समय केंद्रित करके अब अपने मन को ये सारे अनुभव जो है भगवान के आदान प्रदान, रसमय आदान प्रदान, उसके एक एक पन्ने से याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि ये भगवान का भक्तों के प्रति आदान प्रदान। और यहां भगवान का ये स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि प्रभु आप मेरी ओर आक्रमण करते हुए चक्र लेकर आए, रथ का पहिया लेकर भाग के आए। और भगवान भीष्म पितामह पूर्ण रूप से आनंदित हो गए। क्यों आनंदित हो गए? क्यों आनंदित हो गए? क्योंकि ये रासलीला हो रहा था कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। आपको मालूम है कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भी रासलीला हुआ था। रासलीला सिर्फ वंशीवट में नहीं हुआ, वंशीवट में माधुर्य रस में रासलीला हुआ, पर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भीष्म पितामह के साथ वीर्य रस दास्य रस में रासलीला हुआ। रासलीला मतलब क्या? प्रेममय रस का आदान प्रदान। एक आपको एक झलक दिखाता हूं इस रस का। भीष्म पितामह भगवान के साथ दास्य रस था उनका, और वीर्य रस। वीर्य रस मतलब शूरता से आदान प्रदान, जैसे दो पहलवानों का वीर्य रस होता है, थोड़ा एक दूसरे को पीटते हैं प्रेम से, एक दूसरे को पटकते हैं, वो भी प्रेम का आदान प्रदान। कई बार मैंने बताया है कि मैंने देखा है कभी कभी दो लड़कियां बहुत समय के बाद एक दूसरे को मिलती है सहेलियों से, तो एक सहेली ऐसा बैठी हुई है उसको वेटिंग करते हुए, अभी ट्रेन आएगा और मेरी सहेली 20 साल के बाद मिलने को आएगी, तो क्या करती है? पीछे से आती हो और ऐसा आंख बंद कर देती, कौन है गेस, ये क्या हो? फिर ओ अच्छा अच्छा ये स्त्रियों में इस प्रकार का आदान प्रदान। पर अगर दो लड़के मिले बहुत सालों के बाद, वो आंख बंद नहीं करेगा, पीछे से आके हाथ से फाड़ करके एक थप्पड़ मारेगा, मतलब पीठ के ऊपर करके गिर गया, और गिरने के बाद पीछे हो तो बोला ये अलग आदान प्रदान। कोई बाहर वाला खड़ा है तो बोलेगा ये भी घुमा के भी शायद मारेगा उसको, इतना जोर से कैसा पीटा उसने। पर वो मित्र को ही मालूम है ये प्रेम का रसमय आदान प्रदान। तो इस तरह से वीर्य रस में मतलब बाण चलाकर जब खून निकलता है तब रस का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह से यह आदान प्रदान हुआ। क्यों, कैसा आदान प्रदान हुआ? भीष्म पितामह ने भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्षत्रिय है भीष्म पितामह, क्षत्रिय है, तो पांडवों के प्रति उनका प्रेम था, प्रेम होने के कारण अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ नहीं रहे थे। वो दुर्योधन जान गया और दुर्योधन ने उनको क्या बोलते हैं उबसाया उकसाया, हाँ उकसाया ऐसा, मालूम है आपके प्रिय इसलिए तो मारते नहीं हुआ क्या क्षत्रियो, क्षत्रिय मतलब एक क्षत्रिय को जब उसकी शक्ति के ऊपर अगर चैलेंज किया जाए सहन नहीं कर सकता। भीष्म पितामह ने वचन लिया, अब देखिए भीष्म उनका नाम भीष्म देवव्रत से भीष्म क्यों पड़ा, भीष्म मतलब एक बार वचन ले लिया पत्थर के ऊपर लकीर, उन्होंने कसम खाई थी कि मैं शादी नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहे वो क्षत्रिय, तो उन्होंने वचन लिया। जब दुर्योधन ने उनको उकसाया तो उसने उन्होंने कहा कि मूर्ख तुझे ऐसा लगता है कल ये पांच तीरों से, खास उन्होंने पांच तीर रखा था, बोले ये पांच तीरों से मैं पांच पांडवों को जान से मार डालूंगा। खुश सारे कौरव, क्योंकि भीष्म ने अगर वचन ले लिया मानो पांडव खत्म हो गए, बहुत आनंदित हो गए। भीष्म का वचन है और पांडवों को पता लग गया, ये भगवान श्री कृष्ण को पता लगा, कृष्ण ने अर्जुन को भेजकर दुर्योधन को याद दिलाया कि तुझे मालूम है तूने मुझे एक वचन दिया था। अर्जुन दुर्योधन ने कहा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद आपस में मिलते जुलते बातचीत करते थे, फिर सुबह सुबह सूर्य हो गया तो लड़ाई तैयार, फिर आपस में एक तंबू में बैठकर खा सकते चलता है, तो इस तरह से आपस में आए तो बोले क्या चाहिए तुम्हें, बिना लड़ाई के चाहिए तो मैं राज्य देने के लिए तैयार हूं। दुर्योधन ने कहा, अर्जुन ने कहा कि नहीं वो सब मांगने नहीं आया हूं, तूने मुझे वचन दिया था याद है। अर्जुन ने कहा, दुर्योधन ने कहा याद है, बोले मैं वो पांच तीर चाहता हूं जो भीष्म ने तुझे दिया है, क्योंकि दुर्योधन ने कहा पितामह ये मैं रखूंगा कल सुबह आपको मैं दूंगा अपने हाथों से, और वो पांच तीरों को अर्जुन ने मांग के ले लिया। अगले दिन सूर्योदय हुआ, भीष्म पितामह तैयार हुए, बोले दुर्योधन लाओ वो पांच तीर। दुर्योधन बोला पांच तीर तो गए, क्यों क्या हो गया, अरे वो अर्जुन आके ले गया। तुरंत भीष्म समझ गए ये किसका काम है, ये बोले अर्जुन ये काम नहीं कर सकता, इसके पीछे सबके पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ होता है, पर खास करके भक्तों के कार्यकलाप के पीछे भगवान का हाथ है ही। कृष्ण ने मेरे वचन को तोड़ दिया, ठीक है, मतलब उन्होंने एक दांव लगाया, वीर रस में उन्होंने एक दांव लगाया और मुझे अपने वचन तोड़ने में मजबूर किया। आज शाम सूर्यास्त होने से पहले मैं कृष्ण के वचन को तोड़ दूंगा। कृष्ण ने वचन लिया है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। आज किसी न किसी तरह से निश्चित रूप से कृष्ण को अपना वचन तोड़ना ही पड़ेगा। कैसे, मैं भले पांच पांडव को नहीं मारूंगा पर आज मैं अर्जुन को मार के रहूंगा, 100% निश्चित मैं आज अर्जुन को मारूंगा। और अगर अर्जुन को मार दिया, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, अगर मैं अर्जुन को मार दिया तो भगवान का वचन टूट गया कि अर्जुन मारा गया, भगवान ने रक्षा नहीं की उसकी। और अगर भगवान अर्जुन को बचाना चाहते हैं तो उनको अपने हाथों में अस्त्र लेना ही पड़ेगा, तो भी तोड़ दिया उन्होंने अपना वचन, ऐसे भी तोड़े या ऐसे भी तोड़े, तोड़ना तो पड़ेगा ही। उस दिन भीष्म पितामह ऐसे लड़े मानो महाभारत में वर्णन है कि जैसे गरम गरम तलवार अगर मक्खन के अंदर घुसाओ तो कैसे प्रेम से घुस जाता है और पिघला देता है, इस तरह से एक गरम लोहे की तरह जिस प्रकार मक्खन में घुसता है उस तरह पांडवों की सेना को चीरते हुए कहां भी जहां भी था अर्जुन वहां तक पहुंच गए। पहुंचने के बाद अर्जुन को उन्होंने निहत्था कर दिया, उड़ा दिया, सारे अस्त्र उनके उड़ा दिए, उनके पहिया रथ के पहिया भी तोड़ दिया। अर्जुन पूर्ण रूप से अस्त्रहीन हो गया और भीष्म पितामह ने एक तीर लिया और अर्जुन के ऊपर प्रहार करने ही वाले थे 100%, मतलब ये तीर चलाया तो अर्जुन नष्ट। भगवान श्री कृष्ण ने ये जब देखा तो कृष्ण इतने क्रोधित हो गए, सांवले वर्ण के हैं, लाल हो गए वो, और वो गुस्से से छलांग मारे रथ से और पास में पड़ा हुआ एक रथ का पहिया लेकर ऐसे भागे, जहां यहां वर्णन है जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की ओर भागता है तो आसपास जो भी बाधा आता है कुछ किसी की विचार नहीं किए हुए व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही हकुरुनंदन इस तरह से भगवान श्री कृष्ण क्रोध के साथ रौद्र रस प्रकट करते हुए, क्योंकि भक्तों के ऊपर आक्रमण होता है तो भगवान जिस प्रकार भगवान नरसिंह देव ने परम रौद्र रस का प्रदर्शन किया उस क्रोध से भागने लगे भीष्म पितामह की ओर। तब तक हां तो भाग रहे थे, अर्जुन बोला क्या कर रहे हो प्रभु, अरे मैं मर जाऊंगा चलेगा, पर आपका नाम आपने कहा है कि अस्त्र नहीं उठाएंगे, आप मत कीजिए। अर्जुन उनको पकड़ रहा है, कमर से पकड़ रहा है, पर अर्जुन को भी घसीटते घसीटते भगवान इतने गुस्से से जा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि ये क्रोध से शत्रुता से एक दूसरे की ओर भाग रहे हैं, पर एक भक्त शुद्ध भक्त जो भागवत पढ़ रहा है उसको मालूम है जैसा एक प्रेमी और प्रेमिका भाग कर एक दूसरे के पास आ रहे हैं ऐसे रस का आदान प्रदान हो रहा है। आप बोलेंगे ऐसा कैसा, क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह भाग रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह की ओर भाग रहे, और जब भीष्म पितामह ने देखा अस्त्र उठा लिया आपने, तोड़ दिया मैं आपका वचन, अब उन्होंने अस्त्र शस्त्र फेंका, मार डालो, अब हो गया मेरा, आप जो करना है करो। तो बाहरी रूप से क्या लगता है, भीष्म पितामह को आनंद हो रहा है कि देखो मैंने भी उनका वचन तोड़ा, ये भी असली बात नहीं है। असली बात भीष्म पितामह को क्यों खुश हो रहा है, क्या भगवान ने उनके लिए अपने वचन को तोड़े इसलिए क्या भीष्म पितामह को आनंद हो रहा है? नहीं, भीष्म पितामह को आनंद इसलिए हो रहा है कि भगवान ने इस रथ के पहिए को उठाकर पूरे विश्व के लिए हमेशा हमेशा के लिए इतिहास पुराणों में अंकित कर दिया है मेरा भक्त के प्रति मेरा प्रेम क्या है, अर्जुन के प्रति मेरा प्रेम कितना है, अर्जुन को बचाने के लिए मेरे भक्त को बचाने के लिए मैं हमेशा हमेशा के लिए कलंकित होने के लिए तैयार हूं। कृष्ण जो अपना वचन तोड़ देता है, लोग कहने दो, ये वैराग्य है। भगवान मतलब ऐश्वर्यपूर्ण, और उनका एक ऐश्वर्य है वैराग्य। हर एक व्यक्ति को अपना वचन, मैं वचन वचन कैसा तोड़ सकता हूं, प्राण जाए पर वचन न जाए, पर वचन जाए पर मेरे भक्त का प्राण नहीं जाए, ये भगवान का वैराग्य। ये देखकर भीष्म पितामह प्रसन्न हो रहे हैं, वाह वाह प्रभु आपने अपना मूल स्वरूप दिखाई दिया, आज मैंने आपको जबरदस्ती अपना हृदय की बात दिखाने के लिए मैंने आपको नहीं फोर्स किया, विवश किया कि आपको दिखाना ही पड़ा। तो ये दृश्य जो है, भीष्म पितामह ऐसे खड़े हैं रथ के ऊपर और भगवान उनके शरीर जो है पूरे धूल से लगे हुए हैं, उनकी उतरिया उड़ गई है, उतरिया उड़ गई, ऐसा नहीं कि कुर्ता उड़ गया किसी को पता भी नहीं लगा, भगवान इतने गुस्से थे कि उतरिया उड़ गया उनको पता भी नहीं लगा, इतने क्रोधित हो गए वो। इतना और जितना ज्यादा क्रोध है उतना उसको भक्तों के प्रति प्रेम है कि नहीं? नरसिंहदेव को क्रोध क्यों हुआ? क्योंकि प्रहलाद के प्रति जो बच्चा है, जो मासूम है, जो भक्त है, जो किसी को कुछ तकलीफ नहीं दिया है, सबकी भलाई चाहा है, उसके ऊपर आक्रमण? प्रेम का लक्षण है क्रोध। अगर किसी के प्रति क्रोध, अगर प्रेम नहीं है और उसकी उसका विनाश हो रहा है तो आपको क्या फर्क पड़ता है? अफ्रीका में 50 लोग मर गए, मरने दो ना, क्या फर्क हमको, क्या जाता है, तो अफ्रीका के लोग हैं। तुम्हारे घर में एक मर गया, हां किसने मारा? क्यों? प्रेम। तो इस प्रकार का यह रस आदान प्रदान, पूरा भागवत यही है। शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका। हर एक व्यक्ति रस की खोज में है, यहां है रसराज। अरे ये पियो, ये पियो, जो ये पी लिया अब उसको कोई भी रस, न आम रस, न भोग रस, न स्वर्ग रस, न मुक्ति रस। जिसने भक्ति रस का आस्वादन किया, भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के प्रति प्रेममय आदान प्रदान, रस का आदान प्रदान, जो इसका आस्वादन किया है, वो व्यक्ति इन चीजों में नहीं पड़ेगा, इस भौतिक संसार की चीजों से। अपने आप विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। हम लोग बोल रहे हैं अरे रस को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अरे कैसा छोड़ेगा? भूखा आदमी, अगर एक भूखा आदमी भिखारी चार दिनों से खाया नहीं है और उसके हाथ में किसी ना किसी तरह से एक सूखी रोटी मिली है और आप जाके कहोगे छी सूखा रोटी खाने की चीज है, फेंक दो, फेंक दो, क्यों फेंकेगा? भूख है, कम से कम सूखी रोटी तो हाथ में है। पर आप उसको फर्स्ट क्लास गरम गरम 56 भोग का प्लेट लाके सामने रखोगे तो उसको बोलने की भी जरूरत नहीं, रोटी को फेंकेगा और 56 भोग के ऊपर झपटेगा। इस तरह से रसवर्जम, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो ना का, ऐसा करो ना का, मांसाहार नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, व्यभिचार नहीं, तो कृष्ण भी नहीं, जाओ। क्या कृष्ण भावना क्या है? बोले तो ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। अरे क्या करना है, कुछ तो दो। कभी कभी किसी से पूछा जाता है कृष्ण का, कृष्ण भावना मन जे का है? मांसाहार नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, हाँ का ही नहीं तो आहे का? कृष्ण पढ़ना है मला, नहीं पाई जी। अरे नहीं नहीं नहीं, छोड़ो, सिर्फ भगवान को जोड़ो। सब छोड़ने के बदले सिर्फ भगवान को जोड़, ऐसा रस का आस्वादन करो, अपने आप दूसरा चीज छूट जाएगा। और ये भागवत दे रहा है, और ये भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करके, सुंदर लीला करके पूरे दुनिया को हमेशा के लिए दिखा रहे हैं। और ये सुंदर रस गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये मिला है। ये भागवत कैसा है? फ्रूटी, फ्रूटी मालूम है, आमरस का फ्रूटी आता है डब्बा, उसमें छिलका भी नहीं, गुठली भी नहीं। क्या चाहिए आपको? सिर्फ एक स्ट्रॉ चाहिए, घुसाओ और पूरा बना बनाया रस डब्बे में डाल के सिर्फ स्ट्रॉ घुसाओ और चूसो। इस तरह से भागवतम रसमालयम, इसमें छिलका भी नहीं, कर्मकांड, ज्ञानकांड, उपास, इसमें कुछ नहीं, इसमें इसमें प्योर रस। अब बोलोगे किधर है रस महाराज, कुछ मिल ही नहीं रहा, दिख नहीं रहा है। बच्चे को नहीं मालूम, उसको बोलना पड़ता है, अरे स्ट्रॉ घुसाना पड़ता है, फिर चूसना पड़ता है। और वो स्ट्रॉ क्या है? मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मान नित्यम तुष्यंति च रमंति च। भक्तों के संग में आकर फिर इसका आस्वादन करने का कोशिश करो। भक्तों के संग में जब भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, तीव्रता से, आतुरता से अगर ये आस्वादन करने के लिए आते हैं, वो एक स्ट्रॉ है, वो परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से जो सुनते हैं वो स्ट्रॉ के समान, वो घुसा दिया अगर भागवतम के अंदर और नित्यम भागवत सेवया। फिर तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्च ये चेतयते सितम सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनिश्वरे। तो इस तरह से ये तरीका है नित्यम भागवत सेवया, भक्तों के संग में आकर भागवत का सेवन करो, फिर इसमें एक बार रस मिल गया तो बाहर के दुनिया का रस फीका पड़ जाएगा। तो ये यहां बताया जा रहा है। भीष्म पितामह को जानता ही नहीं, अरे अरे उसने किसी का नमक खाया इसीलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो गई है भीष्म पितामह की नहीं, तो महाजन है वो, महाजन वो ये नगर सपन था, उनका एकमात्र उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, सेवा करना उनकी, चाहे दुनिया कुछ भी बोले कुछ भी समझे, हमारा उद्देश्य है हम भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, और धीरे धीरे ये करने के बाद फिर अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, फिर तब उत्तम भक्ति आएगी एक न एक। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि।
हरे कृष्णा। महत्वाचार अनाउंसमेंट पुढील प्रमाणे, अनाउंसमेंट कडे लक्ष आहे का कृपया? अनाउंसमेंट झाल्याशिवाय मी होणार नाही। इथे सुंदर रसाचं आस्वादन करण्याकरता तुम्हाला हा विद्रोह रस सहन करायला लागणार आहे। अनाउन्समेंट पुढील प्रमाणे, ये पहिली सूचना आहे श्री प्रभुपादांच्या पवित्र ग्रंथाच्या वितरणाची। गेल्या आठवड्यामध्ये उजगाव इथं यात्रा झाली, त्या यात्रेमध्ये भक्तांनी श्री प्रभुपादांच्या पुस्तकांचं वितरण केलं। ते सर्व भक्त पुढील प्रमाणे, मंगल पवार माताजी, सुरेखा सुतार माताजी, पाटे माताजी आणि पाटे माताजी, या चार भक्तांनी पुस्तकाचं वितरण केलं आणि स्कोर पुढील प्रमाणे, 22 भगवत गीता, 8 कृष्णा बुक आणि 80 लहान बुक। त्याचबरोबर गेल्या आठवड्यामध्ये मेरी वेदर ग्राउंड कोल्हापूर या ठिकाणी देखील एका दुसऱ्या संस्थेचा सत्संग कार्यक्रम होता, त्या ठिकाणी भक्तांनी प्रभुपादांच्या पुस्तकाचं वितरण केलं। ते सर्व भक्त पुढील प्रमाणे, गौरतत्व प्रभू, संदीप माताळे प्रभू, गुजर प्रभू, प्रफुल्यमुखी माताजी, ज्ञानू प्रभू, प्रशांत चव्हाण प्रभू, या सर्व भक्तांनी जी पुस्तक वितरित केली आहे त्याचा स्कोर पुढील प्रमाणे, 32 भगवत गीता, 6 कृष्ण पुस्तक आणि 40 लहान पुस्तक। पुढची सूचना देखील बुक डिस्ट्रीब्युशन संदर्भात आहे। तर ही सगळी त्या भक्तांकरता आहे ज्यांनी भगवद्गीता 2008 या मॅरेथॉन मध्ये, भगवद्गीता मॅरेथॉन मध्ये पुस्तकं नेली, भगवद्गीता नेले, तर अजून त्याचा हिशोब परत केलेला नाहीये किंवा दिलेला नाहीये। तर भक्तांना विनंती की ही शेवटची सूचना आहे आणि आपल्याकडे राहिल्या असलेल्या भगवद्गीता किंवा वितरित झालेल्या भगवद्गीतेची लक्ष्मी या आठवड्यामध्ये तुम्ही कृपया आणून द्या, नाहीतर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लस आपल्याला दिसेल आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लस म्हणजे पुढच्या आठवड्यामध्ये नोटीस बोर्डवरती आपली नावं झळकली जातील। तर कृपया आम्हाला साथ द्या आणि स्वतःचं नाव लागू देऊ नका ही विनंती। ही पुढची सूचना सर्व वरिष्ठ भक्तांकरता आहे। उद्या कोल्हापूरमध्ये वृषभानू प्रभू आणि कीर्तिदा माताजी हे येत आहेत। मागच्या रविवारी देखील हे आपण सूचित केलं होतं आणि हे दोन्ही वरिष्ठ वैष्णव कोल्हापूरमध्ये इथल्या वरिष्ठ वैष्णवांची हितगुण किंवा मार्गदर्शन करण्याकरता येत आहेत। तर उद्या सर्व वरिष्ठ वैष्णवांकरता कार्य